الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أصول كرخي یہ امام ابو الحسن کرخی جو متوفا ہیں یعنی جن کی وفات ہوئی ہے 340 ہجری میں احناف کے بہت بڑے مشہور فقی ہیں قاضی ابو حازم اور قاضی ابو سعید کے بعد حنفیہ کے ہاں یہ بہت اونچے مقام پر فائز ہیں ابو سعید کے تو یہ شاگرد ہیں اور ابو بکر الجساس کے استاد ہیں انہوں نے اپنی ایک کتاب میں جسے اصول کرخی کہتے ہیں 40 اصول مرتب کیے ہیں ان میں سے 28 اور 29 اصول یہ ہے کہ ہر وہ آیت جو ہمارے اصحاب کے قول کے خلاف ہو تو وہ یا تو منسوخ ہوگی یا دوسری آیت کو ترجیح دی گئی ہوگی یا اس کی کوئی تاویل کی گئی ہوگی اور دوسرے کا ترجمہ یہ ہے کہ قاعدہ یہ ہے کہ ہر وہ حدیث جو ہمارے ائمہ کے قول کے خلاف ہو تو وہ یا تو اس پر محمول کی جائے گی کہ منسوخ ہو گئی ہے یا اس پر محمول کی جائے گی کہ اس کا اسی درجے کی کسی دوسری حدیث کے ساتھ تعارض ہے تو جو دفع نہیں ہو سکتا اور پھر اسے چھوڑ کر دوسری دلیل کی طرف رجوع کیا جائے گا یا ہمارے اصحاب کی بیان کردہ وجود ہے ترجیح میں سے کسی وجہ کی بنا پر ایک حدیث کو دوسری پر ترجیح دی جائے گی یا تاویل کے ذریعے دونوں کے درمیان موافقت اور مطابقت کی کسی صورت پر محمول کیا جائے گا ان احتمالات میں سے کسی احتمال پر دلیل کے مطابق محمول کیا جائے گا اگر نسخ کی دلیل موجود ہو تو اس پر محمول کیا جائے گا اور کسی دوسری دلیل کی صورت ہو تو اس پر محمول کیا جائے گا اب یہ اصول بظاہر بہت قبیح اور عجیب سا معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کے مقابلے میں فقہ احناف کی دلیل یا ان کی رائے کو اہمیت دی جا رہی ہے تو ظاہر میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا امام صاحب کی رائے یا امام ابو یوسف امام محمد یا کسی بڑے امام کی رائے تو ایز اٹ از قبول کی جائے گی جبکہ حدیث کو چیک کیا جائے گا اس کے مقابلے میں تو جاننا چاہیے کہ اس کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے جیسا ظاہر میں نظر آتا ہے اس کا کل مقصد یا مطلب یہ ہے کہ جب ہمیں ایک سولیٹری نریشن ملتی ہے ایک حدیث ملتی ہے اس کی صحت اور سند ٹھیک ہو تب بھی اس میں چونکہ ہیومن ایرر کی پاسبلٹی رہتی ہے احتمال ہوتا ہے کہ اس میں سمجھنے میں یا اس کے ریکارڈ کرنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو انسانی اور بشری کمزوری کی وجہ سے اس کے برعکس اگر کوئی دلیل آ گئی ہو قطعیت کے ساتھ اس میں ایسا کوئی احتمال نہیں ہوتا تو خبر واحد میں چونکہ یہ احتمال ہوتا ہے اس لیے اس کے مقابلے میں فقہ نے اگر بالخصوص حنفی فقہ نے وہ ایک شورا کے تحت جب بیٹھ کے کام کرتے ہیں اور اس میں تقریباً 30-40 لوگ بیٹھ کے کسی مسئلے کو دیکھتے ہیں اور اس میں بڑے بڑے محدثین ہیں ایسے محدثین ہیں کہ جو خود امام بخاری کے اساتذہ میں سے ہیں عبداللہ ابن مبارک جیسے لوگ وکیع ابن الجراح جیسے لوگ سعید ابن قطان کے صاحبزادے یحییٰ اسی طرح قاضی عیاض یعنی فضیل ابن عیاض اور دیگر بڑے بڑے ائمہ جو احادیث کے بھی ماہر ہیں تو یہ رعایت کی جائے گی کہ انہوں نے ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر پھر فیصلہ کیا ہے ایک ملٹی ڈسپلنری ٹیم کی اپروچ کے ساتھ تو اس کا ڈیسیجن جو ہے وہ ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے ہوا ہوگا اس لیے امام کرخی کا اصل مقصد یہ کہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں یہ بتائیں کہ وہ صریح الدلالات اور غیر منسوخ حدیث یا آیت کے خلاف کبھی بھی کوئی فیصلہ نہیں دے سکتے وہ تو بڑے امام ہیں کوئی مسلمان بھی جان بوجھ کر ایسا نہیں کر سکتا اس لیے کہ فقہ حنفی کے ائمہ اور مشائق کا قول کسی آیت یا کسی حدیث کے خلاف نظر آ جائے तो उसे मुखालिफत कुरान या मुखालिफत हदीस पर बिल्कुल भी महमूल न किया जाए, इसलिए कि इसका तो कोई मोमिन भी तसव्वुर नहीं कर सकता, बल्कि इसको ये समझा जाएगा कि इसमें यकीनन कोई और दलील होगी जिसको देखा जाए, ढूंढा जाए, और ढूंढने के तो मिल भी जाएगी। वजह उसकी यह है कि अगर लोगों के दिलों में मशायख और मुजतहिदीन के लिए नफ़रत या बुग़्ज़ पैदा हो जाए तो ये बड़ी शकावत और बदबख्ती होगी। अगरचे आइम्मा मासूम नहीं होते, लेकिन अलिया रहमान हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह के वली हैं, तो उनसे बुग़्ज़ और नफ़रत शकावत का सबब बनती है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस पेश नज़र रहनी चाहिए, मन आद अली वलीयन फ़कद आदनतुहू बिलहर्ब, कि जो शख्स मेरे किसी वली से दुश्मनी करेगा तो मैं उससे एलान जंग करता हूँ। और अल्लामा इबन तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने एक रिसाला लिखा था, ये रफ़ुल मलाम अन अइमतिल आलाम, और ये मजमूल फतावा के अंदर भी शाया होके उसके साथ मुलहक हो चुका है। तो उसमें तफसील से हज़रत बयान फरमाते हैं कि मुसलमानों पर वाजिब है कि वो अल्लाह और रसूल की मोहब्बत के बाद मोमिनीन से मोहब्बत करें, बिलखसूस उलमाए दीन से मोहब्बत करें, इसलिए कि ये अम्बिया के वरसा हैं, आसमान के सितारों की तरह हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुलफा हैं, और आपकी सुन्नतों को ज़िंदा करने वाले और ज़िंदा रखने वाले हैं। अच्छी तरह समझ लो कि जिन आइम्मा दीन को उम्मत मुस्लिमा में कबूल आम हासिल है, उनमें से कोई भी कसदन या अमदन जानबूझ के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी भी सुन्नत की मुखालफत नहीं करता, ख्वाह वो सुन्नत छोटी हो या बड़ी, इसलिए कि उन सब का इस पर यकीनी तौर पर इत्तेफाक़ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तेबा वाजिब है, और लोगों में से हर एक की बात ली भी जा सकती है और छोड़ी भी जा सकती है, और लोगों में से दूसरे लोगों में से सिवाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। लेकिन इन आइम्मा में से जब किसी का कौल सही हदीस के ख़िलाफ़ पाया गया हो तो उस हदीस के तर्क के लिए ज़रूर उसके पास कोई उज़र होगा, और तमाम आज़ार तीन किस्मों में से होते हैं। एक ये कि उसकी राय और तहक़ीक़ के मुताबिक उसका कौल साबित ही नहीं, यानी ये हदीस जिसको बयान किया जा रहा है इसकी सनद पे उसको एतमाद नहीं, और ये उसको कौल रसूल नहीं समझता। दूसरा ये कि उसके अकीदे और राय के मुताबिक ये मसला कौल रसूल का मिज़दाक और मुराद न हो, यानी उसकी अंडरस्टैंडिंग ये हो कि इसका मतलब ये नहीं, हदीस के अल्फाज तो यही लेकिन इसका मकसद और मतलब ये नहीं। और तीसरा ये कि उसके नज़दीक कौल रसूल से साबित शुदा ये हुक्म मनसूख हो चुका है किसी और दलील की वजह से। इन आज़ार सलासा के बाद फिर मुतअद्दिद असबाब हैं, इसके बाद 10 असबाब बयान किए इमाम इब्न तैमिया ने, जिनका ख़ुलासा यह है कि या तो उसे हदीस पहुँची ना हो, और जिसको हदीस मालूम न हो वो इसका मुकल्लफ ही नहीं रहता, और कोई भी शख्स आम अहादीस रसूल पर अहाते का दावा नहीं कर सकता। खुलफाए राशिदीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुनन और अहवाल का पूरी उम्मत से ज़्यादा इल्म रखते थे, लेकिन बावजूद इसके उनको बाद सुनन रसूल मालूम नहीं हो सके थे और दूसरे सहाबा को मालूम थे, इसके बाद इसकी मिसालें दी हैं इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने। दूसरा सबब यह हो सकता है कि वो हदीस उसकी तहकीक के मुताबिक सही ना हो बल्कि ज़यीफ़ हो, इसलिए कि इल्म रिजाल एक वसी इल्म है, जिस तरह के बाकी उलूम के उलमा का बाज़ उमूर में इत्तफाक़ हो सकता है और बाज़ में इख्तिलाफ़, इसी तरह इल्म रिजाल के उलमा का भी रिजाल की सकाहत और अदम सकाहत और असानीद के सेहत और अदम सेहत में इत्तफाक़ भी हो सकता है और इख्तिलाफ़ भी हो सकता है। तीसरा सबब यह हो सकता है कि इस हदीस की सनद एक इमाम की शरायत पर पूरी न उतरती हो और दूसरे इमाम की शरायत पर पूरी उतरती हो। चौथा सबब यह हो सकता है कि वह इस हदीस को भूल गया हो। पांचवा सबब यह हो सकता है कि उसके नज़दीक ये हदीस ज़ेरे गौर मसले पर दलालत न करती हो, इसलिए कि नुसूस की इबारात, दलालत, इक्तदात, इशारात और मफहूमात का इल्म बड़ा वसी इल्म है, जिसमें इख्तिलाफ़ राय भी हो सकता है और इत्तफ़ाक़ राय भी। फिर छठा सबब यह बयान करते हैं कि उसके नज़दीक इस हदीस का दूसरी हदीस से तआरुज़ हो, जिसको दफ़ा करने के लिए नस्ख या तावील या तरजीह में से कोई तरीक़ा इख्तियार किया जाता है, और इसकी तहकीक़ में इख्तिलाफ़ राय भी हो सकता है कि हदीस का मनसूख होना एक के नज़दीक साबित हो और दूसरे के नज़दीक साबित न हो, या ये एक के नज़दीक एक हदीस रिवायत और दिरायत के एतबार से राजे हो और दूसरे के नज़दीक दूसरी हदीस राजे हो, या एक इमाम हदीस की एक तावील करता हो दूसरा इमाम दूसरी तावील करता हो। ये वो असबाब व आज़ार हैं जिनकी वजह से किसी मुजतहिद का कौल हदीस या आयत के ख़िलाफ़ नज़र आता है, लेकिन हकीकत में उसका मकसद हदीस की मुखालफत नहीं होता, मगर इन वजूहात और एहतमालात के बावजूद हमारे लिए जायज़ नहीं कि हम इस कौल को छोड़ दें जिसकी हुज्जत सही हदीस के ज़रिए वाज़ह हो चुकी हो, और अहले इल्म की एक जमात ने इसकी तायिद भी की है। और अगरचे दूसरा कौल का कायल बड़ा आलिम हो, इसलिए कि उलमा की आरा में ख़ता और गलती का इहतमाल अदिल्ला शरईया के मुकाबले में ज़्यादा है, क्योंकि आलिम की राय सारे लोगों के लिए हुज्जत नहीं बन सकती, मगर शरई दलाइल अल्लाह के सारे बंदों पर उसकी हुज्जत होता है। और यही नुक्ता नज़र है तमाम आइम्मा का कि जब तक उसकी वजाहत ना हो जाए कि ये बात इमाम साहब को या उनके शागिर्दों को, उनकी पूरी शूरा के लोगों को, उनके बाद के आइम्मा को बात सही से न पहुंची हो और इसमें कोई हमें दलील समझ में ना आती हो, तो फिर जाहिर बात है इमाम साहब के कौल को रद्द किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। और ऐसा बारहा हुआ है, इसीलिए बहुत सारे मसाइल में इमाम साहब के फतावा के खिलाफ भी फतवा हनफी फ़िक़्ह का फतवा होता है, तो आराएँ उसमें मुख्तलिफ हैं और उन्हीं को लिया जाता है। तो ये बात ठीक नहीं है, ये उसूल इस तौर पर बयान किया कि लोगों में, आम लोगों में बिलखसूस, और किसी तरह से बुग्ज़ और इनाद ना आए, बल्कि ये समझ में आए कि यहाँ कोई दलील होगी जो मुझे समझ में नहीं आ रही, और अगर समझ में आ जाएगी तो उस दलील पर ही अमल किया जाएगा, इसमें किसी का इख्तलाफ नहीं। और यानी इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक, इमाम अहमद की अगर कोई तावील या दलील होती है तो उसको भी लेते हैं। तो बहरहाल खुलासे कलाम ये है कि इमाम करखी रहमतुल्लाह अलैह की इस इबारत का कुल मफहूम ये है कि जब आपको वो बात बज़ाहिर ऐसी लगे कि हदीस के ख़िलाफ़ है, तो उसमें पूरा गौर व ख़ौस कर लीजिए, या मुज्तहिदीन से राबता करके, उलमा फ़ुकहा से डिस्कस करके उसको वाज़ह कर लीजिए। वरना जो आजकल सिलसिला है कि एक हदीस उठाई और जो मसला उसके ख़िलाफ़ नज़र आया किसी भी फ़िक्र में, बिलखसूस अहनाफ के यहाँ, तो उस पर रद्द किया और तान शुरू कर दिया। तो ये तरीक़ा बिल्कुल जहालत पे मबनी है और शकावत का ज़रिया बन सकता है, इसीलिए आइम्मा ने इससे रोका है। और इसी से इमाम करखी भी लोगों को रोक रहे हैं कि अपनी आखिरत की फ़िक्र करो और दूसरों के बारे में लबकुशाई से और ज़बान को खोलने से बचो, इसलिए कि ये तुम्हारे लिए नुकसानदेह है। और किस कदर अजीब बात है कि वही लोग जो ये इल्ज़ाम लगाते हैं, साथ ये नहीं देखते कि अहनाफ के यहाँ बाकायदा इवन ज़यीफ़ रिवायात को भी लेकर उस पर भी अमल किया जाता है, और हमारे यहाँ एक हदीस एक मसले में अगर एक बात कहे और दूसरी हदीस भी उससे ऐसी कहे कि जिसमें दोनों में तदबीक हो सकती हो, तो उन दोनों पर अमल करना लाजिम होगा। यानी एक से ज़्यादा अहादीस को बाकायदा इम्प्लीमेंट किया जाता है। मिसाल उसकी हदीस कहा है कि उसके ज़ोफ़ के बावजूद किसी दर्जे में ही सही, उसको कबूल भी किया है, और सिर्फ अहनाफ नहीं कबूल किया है। मफ़कूदुल ख़बर शोहर के लिए उसकी बीवी का जो मसला इमाम अबू हनीफ़ और हनफी फ़ुका के नज़दीक 90 साल था, उसको 4 साल इमाम मालिक के फतवे पर कबूल किया गया है। हरमैन में जब असर की नमाज़ होती है, जो अव्वल वक्त में होती है, तो हमारे फुकहा की तरफ से यही फतवा होता है कि वो भी अव्वल वक्त में हरम के अंदर ही पढ़ लें, जो साहिबैन के कौल पर और आइम्मा सलासा के कौल पर फतवा है, उस सूरत में दिया जाता है। और जो जो ज़रूरत पैदा होती है मुख्तलिफ फुकहा की आरा को लेते हैं दलाइल को सामने रखते हुए, लेकिन सिर्फ तलह ही के लिए नहीं, नफ्स की इत्तबा के लिए नहीं कि दिल चाह रहा है तो ऐसा कर लें, ऐसा महसूस होता है तो ऐसा कर लें, क्योंकि कुरान इसमें क्लियर है कि अफ़राई तमन इतखद इलाहु हवा, कि इसको नफ्स परस्ती खुदा बनाना है नफ्स को, अगर अपनी राय और अपनी ख्वाहिश को पूरा किया जाए तो। चूंकि अहादीस जब सामने आती हैं तो उनमें तआरुज़ हो सकता है, कभी वो कुरान की आयत के ख़िलाफ़ हो सकती हैं, तो इन सब को बहुत तफसील से देखा जाता है और उस पर अमल किया जाता है। इबारात को इधर उधर से लेकर पूरा उसूल करखी पूरी पढ़िए, सारे पॉइंट्स देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि अहनाफ हदीस के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि जिस एहतमाम के साथ हमारे यहाँ हदीस पढ़ाई जाती है, साहिह सित्ता और इसके अलावा दीगर कुतुब, वो शायद ही कहीं और पाई जाती हो। तो असल में ये एक बाकायदा बुग्ज़ व इनाद की एक फ़ज़ा है, ख़ास एक मिजाज बनता जा रहा है कि पुराने लोगों को बुरा भला कहा जाए, और ये क़यामत की निशानियों में से है, इससे अपने आप को बचाना चाहिए, एहतियात करना चाहिए। और फिर उसकी कुछ मिसालें बताई जाएं कि कहाँ ऐसा है कि वो हदीस आप पेश करें जिसमें कोई और हदीस उसकी मुतआरिज़ न हो, कुरानी आयत उसकी मुतआरिज़ न हो। आपको सीधी सीधी कुरान की आयत दलील के तौर पे दी जाए, दूसरी हदीस दी जाए, फुकहा का कौल दिया जाए, इसी तरीके से सहाबा के फतावा दिए जाएँ, तो उसको आप रद्द करते हैं और फिर भी कबूल नहीं करते। तो ये तो सिवाय इनाद के और कुछ नहीं। अल्लाह सुबहानहु ताला हमारी नीयतों में इखलास पैदा करे और इल्म में इजाफ़ा फरमाए।